समझो मेरी आवाज इतनी ऊंची है शायद दुनिया तक पहुंच जाए।
लीजिए साहब इतनी दूर माइक रखा हुआ है अपना,
तो क्या हुआ फिर अभी मेरी आवाज नहीं आ रही?
नहीं आ रही।
अच्छा अच्छा अच्छा,
इसलिए आप तो प्रोफेशनल हो गई हैं आप, तो आपको आप पता होना चाहिए कि माइक कितने।
नहीं मैंने आजकल जरा टिराई कर लें, जरा ऐसे दूर करके जरा सोच लें कि क्या जो है
एको बन के जाए।
हाँ एको बन के जाए बिल्कुल ठीक है
जी।
अच्छा मैं भाई मुझे बताएं आजकल आपके क्या हालात हैं, आप ठीक हैं खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा बिल्कुल ठीक है।
हालात को खराब नजर आ रहे हैं आपको?
हाँ मुझे कुछ नजर आ रहे हैं बिगड़े हुए, तो मैंने कहा अगर बिगड़े हुए हैं अगर तो मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकती हूँ, लेकिन जो छोड़ो आपके हालात ठीक है, आप सोल्यूशन देने की
नहीं, सोल्यूशन नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि अगर वो सोल्यूशन जिया दिया तो किसी और के साथ चिपक जाएंगे आप, चाहे
कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए,
कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रेयस नहीं चाहिए
आपको,
कोई श्रेष्ठ नहीं चाहिए।
एब्सोल्युटली नॉट।
अच्छा अच्छा, तो आपकी जो है वेल्डिंग एनिवर्सरी कब हो रही है आप बताएं जरा, जिनके साथ आप वेल्ड हो चुके हैं बताएं कब हो रही है वेल्डिंग?
सारी चीजें होती है छप्पन पर रखी जाती है।
अच्छा ओके ओके। अच्छा देखिए मैं तो एक वो होता है बंदा जिसको कोई कोई मेरे जैसा जो है ना जो अच्छे दिल का बंदा अच्छा मशवरा दे तो वो ले लेता है। अब आप जो है आपके इस अच्छे दिल वाले बंदे का अच्छा मशवरा नहीं ले रहे, हालांकि हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन अब आपको अपना शौक नहीं अपना लाइफ चेंज करने का।
अभी तक आपको पता नहीं लगा कि मेरी लाइफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का काम है। बहुत अच्छी है जी।
अच्छा नहीं ये तो माइक के सामने है ना
माइक हो टीवी हो कैमरा हो एवरीवेयर।
एब्सोल्युटली। अच्छा एब्सोल्युटली नॉट, दूसरे के साथ श्लेष नहीं लगानी है आपने?
नहीं साहब।
अच्छा 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 चलो ठीक है माइक भाई ठीक है।
मुझे अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी है।
वो मियां बीवी लड़ रहे थे ना आपस में, वो बीवी ने उसको कहा आप जैसे मासूम आदमी को कहा, उन्होंने कहा गो टू हेल, कहता है आई एम ऑलरेडी लिविंग इन हेल। तो बस मुझे तो ये आपका चॉइस है, आप हेल में रहना चाहते हैं हमारे। चलो जिससे पहले के वीदा जी मुझे जूतियां
जन्नत अल फिरदौस।
चलो चलो हम
जन्नत अल फिरदौस,
हम खबरें खबरें मजे भाई, खबरें बड़ी जरूरी है, खबरें जरूरी है। अच्छा जी अच्छा जी, हमारे जो एडवर्टाइजर हैं अदनान अलवी जी, अदनान अलवी जी कहते हैं कि शाजिया मलिक की तरह गरीब फकीर फटीचर हो के जीने की जरूरत नहीं है, लिव वेल्दी। अच्छा जी लिव वेल्दी के लिए
जिंदगी से तो मौत
मान मौत है, ऐसे बंदे को मर ही जाना चाहिए जिनकी ऐसी जिंदगी है शाजिया मलिक जैसी, उनको मर ही जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी तो अदनान अलवी जी कहते हैं कि जी लिव वेल्दी इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट वाइजली लिव वेल्दी। तो अगर आपको बहुत सारे इनके पास पैकेजेस हैं जो आपको बताते हैं कि आप कैसे अमीर हो सकते हैं, हाँ जल्दी नहीं, जल्दी अमीर होने का नहीं, लेकिन हौले हौले वक्त के साथ आप कैसे अमीर हो सकते हैं, अदनान अलवी साहब आपको बहुत सारे ऐसी सुविधाएं देंगे। ठीक है जी, तो आप इनको कॉल कर लें एट 416-301-0249। अच्छा इसके अलावा जनाब चंदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, इसमें आप 1300 लोगों का पार्टी कर सकते हैं, प्लस माजिद भाई शाजिया एंड यानी आमिर थे, मतलब साड़ा छोटा है ना, उतने साढ़े नाल जाना ही जाना है,
आधा खाता
हाँ आधा आधा खाता है ते हो। ठीक है जी, तो इसमें वो कहते हैं जी 32 रूम लग्जरी होटल है और बड़ा आइडली लोकेटेड है ये 2935 ड्री रोड मिसिसागा में। अगर आपको अपने फैमिली के या बिजनेस के इवेंट्स करने हैं तो आप यहां पे अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आज है फ्राइडे है जी, तो आज तो जो है आप अच्छा खाना अगर खाना चाहते हैं तो विलेज टेस्ट पे जाएं, ओंटारियो का
लॉट रोजाना तो खाते नहीं
अच्छा खाना। नहीं नहीं
फ्राइडे के फ्राइडे,
फ्राइडे के फ्राइडे सिर्फ अच्छा खाना मिलता है, बड़ा खाना जिसको कहते हैं बड़ा खाना। तो अगर आपने बड़ा खाना खाना है तो प्लीज आप इधर विलेज टेस्ट में जाएं, इनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक है 4141 डिक्सी रोड में मिसिसागा में, वहां पे भी जा सकते हैं, और अभी जो लेटेस्ट खुला है ओकविल में, इट इज एट 2294 लेकशोर रोड वेस्ट। अगर आपको ऑर्डर डालना है तो आप इनको कॉल कर लें एट 905-226-2294। इसके अलावा जनाब और भी अगर अच्छा, इससे भी अच्छा और ज्यादा यानी कि नेक्स्ट लेवल खाना खाना चाहते हैं माजिद भाई की तरह, ताकि आप 16 ईयर ओल्ड पितले दुबले हो जाएं, तो नानन कबोब पे जाएं। ठीक है जी, नानन कबोब जो है वो 5042 सेटेलाइट ड्राइव के ऊपर मिसिसागा में है, यूनिट फिल्मी 3 है इनकी। और अगर आपको इनको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपना ऑर्डर डालना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 416-285-8191 पे। ठीक है जी, ओके जनाब, आज की जो खबरें हैं वो आपने बहुत ही ध्यान से सुननी है इस वास्ते के कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रेंजिंग खबरें हैं, ठीक है जी। हाँ जी, वैसे तो रोज ही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज हम कोई बकवास खबरें दे रहे हैं, नहीं, रोज भी हम बहुत अच्छी खबरें दे रहे हैं। तभी तो मैं माजिद भाई को कहती हूँ, माजिद आप कितने खुशनसीब हैं कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, देखिए जरा, तो आप लोग भी खुशनसीब होने की कोशिश करें हैं। अच्छा जनाब, आज जो बिजनेस काउंसिल ऑफ कैनेडा है वो कह रही है कि फेडरल गवर्नमेंट को कि जो आपका सीसेस है यानी कि जो आपकी स्पाई एजेंसी है उसके अंदर कुछ एक चेंजेस लाने की जरूरत है, जिसकी की वजह से वो हमारे साथ कुछ अपनी जो इंटेलिजेंस है जिसमें कि थ्रेट इन्वॉल्व होता है, थ्रेट इंटेलिजेंस जो है वो अगर हमारे बिजनेसेस के साथ भी अगर वो शेयर करेंगे तो उसमें हमको टाइमली प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने का जो है वो वक्त मिल जाएगा, ठीक है ना, टाइमली हम प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लेंगे। इनके जो प्रेसिडेंट हैं सीईओ गोल्डी हैदर, उन्होंने कहा है जी कि हमने एक रिकमेंडेशंस जो हैं वो डाली हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और हमने कहा कि आप अपने लेजिस्लेशन में चेंजेस लेकर आए। जो ये सीसेस एक्ट है ये कहता है कि ये जो स्पाइस सर्विसेज हैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो होती है डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं, तो वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता प्रोविंसेस टेरिटोरीज या कि इंडिजिनस गवर्नमेंट्स या म्यूनिसपैलिटीज के साथ, तो इसलिए ये लिमिट करता है सीसी को कि ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर करें। इसी को वो चेंज करने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अगर आप इनको कहेंगे तो ये जो हमारे बहुत सारे साइबर अटैक्स और इस तरह की चीजें हमारे पे होती हैं तो उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। आज जनाब पियर पॉलिवर ने वही कम किया है जी जो आपके दोस्त करते होते थे अल्बर्टा में।
अच्छा।
कौन
जेसी
कहनी? हाँ, जेसन कहनी। अच्छा, जेसन कहनी वाला कम किया पाया ने,
ठीक है।
हाँ जी, पियर पॉलिवर साहब, मैं तुहानू पहले ही कह रही हूं तुसी जरा अगे अगे जा रहे हो, तुसी प्लीज अगे ही चलो, ए हरकतां करके ना तुसी अपने पैर ते खुद कुल्हाड़ा ना मारो। पियर पॉलिवर साहब ने आज बेतहाशा जो है क्रिटिसाइज किया मेयर्स ऑफ क्यूबेक्स टू लार्जेस्ट सिटी, एक क्यूबेक सिटी को और एक मॉन्ट्रियल को। उन्होंने कहा जी कि इनके ये जो मेयर्स हैं ये इंतहाई जो हैं मतलब नकारा किस्म के, वो उन्होंने कहा जी इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट को क्या बोलते हैं, नकारा बोलते हैं है ना, हाँ, तो बोलते हैं जी इंतहाई ये इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये काट रहे हैं। अच्छा, ये आप किस बात पे बात कर रहे थे? ये सीएमएचसी की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें जो एनालिस्ट थे उनके फ्रांसिस कॉटलिनो, उन्होंने जनवरी 16 को एक रिपोर्ट निकाली थी और उसमें उन्होंने कहा था जी कि क्यूबेक में कभी भी इतने कम हाउसेज नहीं बने सिंस 1955 जो कि अब बन रहे हैं, और इन्होंने कहा था जी कि देर इज अ 7% डिक्रीज इन हाउसिंग स्टार्ट्स, यानी कि उन्होंने कहा जी कि जो 10,000 पीपल की जो पॉपुलेशन का जो एक एरिया होता था उसमें बन रहे हैं अब जो है घर बने हैं 2023 में वो 223,513 है, जबकि 2022 में ये बहुत ज्यादा थे, ये थे 240,590, तो उसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर अब जो मेयर्स हैं क्यूबेक सिटी के, जैसे मेयर हैं ब्रूनो मार्चेंट और मॉन्ट्रियल की जो मेयर हैं वैलोरी प्लांट, इन्होंने जो है कहा है जी कि आप ये अपनी पैटी पॉलिटिक्स ना करें और आप जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ बात ना करें। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है जी कि पियर पॉलिवर साहब को शायद पता ही नहीं है कि ये सारी चीज काम कैसे करती है, इनके अपने कुछ फंड्स होते हैं, अगर वो कम पड़ जाते हैं फिर फेडरल गवर्नमेंट उनको देती है, फिर उसके ऊपर लेजिस्लेशन होता है, फिर एक सर्टन एरिया जो है वो ढूंढा जाता है उसके ऊपर फिर जो है डेवलपमेंट होती है, ये ऐसे ही मुंह उठा के नहीं हो जाती है। अब इसके ऊपर ट्रूडो साहब भी भड़क गए हैं, ट्रूडो साहब जो है वो भी कह रहे हैं जी के पियर पॉलिवर साहब जी, उन्होंने फ्रेंच में आज बात की ताकि समझ ना आए उन्होंने, ट्रूडो साहब ने अंग्रेजी में बात की है, फ्रेंच में बात की है, उन्होंने कहा जी कि ये पियर पॉलिवर साहब की इग्नोरेंस शो करती है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस जो हैं वो कैसे काम करते हैं, और ये इनका बड़ा ही गलत किस्म का बिहेवियर था, तो अपने गलत बिहेवियर की वजह से ये अपोलोजाइज करें। लो जी पायल, वीकेंड वास्ते कटक घूम भी थे ना जी, यानी आप बैल मुझे मार, वो पाए तो उनकी तकलीफ
है, उनके हाथ से गई
मॉन्ट्रियल, तो नहीं वोट मिलने पाया ना, मतलब अगे चल रहे हो अगे चलते रहो, क्यों कर रहे हो इस तरह की हरकत बहरहाल जी। ये अच्छा जनाब, ओनर ऑफ जो एक टोरंटो की कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इनका नाम है रुजबेक अखलागी, और ये जो है इनको आज अलेज्ड चार्जेस ऑफ फ्रॉड के ऊपर पकड़ा है यॉर्क रीजनल पुलिस ने, जो कि इन्होंने किए हैं जीटी और हैमिल्टन में, और पुलिस का कहना है कि शायद और लोग भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये सारी की सारी एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी यॉर्क रीजनल पुलिस ने 2022 में, और बहुत अरसे से इनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन इनको कुछ जो है वो सुराग, जैसे बोलते हैं ना, सुराग नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बहुत सारे फ्रॉड्यूलेंट बैंक ड्राफ्ट्स जो थे वो लोगों को दिए थे, और फिर वो बहुत सारा सामान जो था कंस्ट्रक्शन का उठाया था, और फिर थर्ड पार्टीज को डिस्काउंट के ऊपर बेचा था। क्या जबरदस्त बिजनेस
का खरीदा है, उससे कब बेच दिया?
हाँ, बेच दिया, मतलब
उनको तो फ्री मिला था, उनको फ्री मिला हुआ था,
उसको फ्री मिला हुआ था, ठीक है जी। तो वो करते हैं, तो अब जब लोगों के चेक्स, जाहिर है कि अब वो डालेंगे तो बाउंस होंगे ना, तो वो जब होने शुरू हुए तब इनको पता चला, उन्होंने पुलिस को की, तो पुलिस जो है उसने फिर इनके जो घर में जो है वो डाका, सॉरी, छापा मारा। पंजाब पुलिस डाका मारती है जी, नहीं ये पुलिस नहीं मारती। तो इन्होंने इनको पकड़ा है जी, रुजबेक साहब को, ये ओनर है नेशनल कंक्रीट फॉर्मिंग एंड पॉर्स कंक्रीट के मालिक हैं। तो इनके ऊपर जो है उन्होंने 28 चार्जेस लगाए हैं, और इनके घर में जब ऐसे उन्होंने छापा मारा तो वहां पे जनाब ड्रग्स भी उनको कुछ जो है मिली। ये जो चार्जेस हैं अभी तक कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन यॉर्क रीजनल पुलिस ने कहा कि अगर आपको इस बंदे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है या कोई भी और ज्यादा विक्टिम्स हैं तो वो सामने आके इनके यॉर्क रीजनल पुलिस के फाइनेंशियल क्राइम्स यूनिट में कॉल कर सकते हैं 1-800-876-5423, दैट इज 1-866-876-5423, एक्सटेंशन 6611, या के क्राइम स्टॉपर्स को आप कॉल कर सकते हैं। ये जो सूरत हाल है जी ऑन्टेरियो में, ये बेतहाशा जो है चिंता का बायस बन सकती है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट तो खैर क्वींस यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऑन्टेरियो की तकरीबन जो है कोई 16-17 जो कोई यूनिवर्सिटीज हैं या 23 यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं।
Exactly.
नहीं है हमारे पास फंड्स, और हमारे पास जो है फाइनेंशियल सिचुएशन हुई हुई है, हमारे पास बजटरी जो है वो प्रेशर्स हुए हुए हैं, इसलिए क्योंकि जो ऑन्टेरियो की गवर्नमेंट है उसने इनके फंड्स काट लिए हैं, और उसकी वजह से फिर फर्दर इनको अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स जो हैं वो कट करने पड़ेंगे। प्रोवोस्ट एंड वाइस प्रिंसिपल मैथ्यू एवंस ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी, जो कि किंस्टन में है, उन्होंने कहा है जी कि हम जो है अपने सारे जो रिजर्व्ड जो फंड्स हैं हौले हौले 2025-26 तक सारे के सारे हम एग्जॉस्ट कर जाएंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड साइंस जो है वो तो पहले ही बहुत ज्यादा जो है फंड्स उसके जो है वो चले गए हुए हैं, और ये जो कट्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं ये बहुत बुरे तरीके से हमें कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि हमारा जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड है, ये दूसरे प्रोफेसर कुछ ने कहा है कि जो हमारा कैनेडियन यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है वो वैसे नहीं रख सकेंगे अगर आपने हमको पैसे ना दिए। अबाउट हाफ ऑफ ऑन्टेरियो यूनिवर्सिटीज, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास डेफिसिट चल रहा है, और ये जैसे मैंने भी आपको बताया कि 23 तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से 10 जो हैं वो कह रही हैं जी कि हमारा शॉर्टफॉल जो है वो टच कर रहा है $175 मिलियन को, और अगर ये हमको जो फंड्स ना दिए गए तो फिर हमारे लिए कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। फंड्स जो है वो डिक्रीज हो गए हैं, होने शुरू हुए थे स्टार्टिंग 2019 व्हेन फेडरल जब फोर्ड गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो है ट्यूशन फी को कट कर रहे हैं फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स बाय 10%, और फ्रीज की थी ये जो ट्यूशन फी थी फॉर 5 ईयर्स। काउंसिल ऑफ ऑन्टेरियो यूनिवर्सिटीज ने अब ऑन्टेरियो गवर्नमेंट को कहा कि भाई ये फ्रीज आप लिफ्ट करें और बूस्ट करें पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन की फंडिंग, क्योंकि ये आपने फीसें इतनी बेतहाशा कम कर दी हैं और आपने ये जो इन्फ्लेशन आ गई है 25%, इसका आपने ख्याल नहीं रखा है, तो इसलिए आपको जो है अब यूनिवर्सिटीज का ख्याल करना पड़ेगा, वरना फिर जो है कुछ यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको बढ़ावा दे रही हैं, और क्योंकि उनकी फी को कैप नहीं किया गया था तो जाहिर है कि अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे क्योंकि वो फी ज्यादा दे रहे हैं तो वो फिर यूनिवर्सिटी अपना स्टैंडर्ड कैसे रखेगी कि भाई जीपीए इतना होना चाहिए या कि आपका एलसेट या जो है जो एम कॉम या एम सैट का जो है वो स्कोर ऐसे होना चाहिए। फोर्ड गवर्नमेंट ने कहा था कि जिस वक्त तक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज नहीं दिखाएंगी तो उस वक्त तक उनको एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन इससे यूनिवर्सिटीज की हालत अब काफी पतली हो गई है। एएफपी की रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया जो है उसने अपना जी आज टेस्ट किया है बहुत ही हाई एंड अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, और ये इन्होंने किया है इन रिस्पॉन्स टू द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज बाई यूएस साउथ कोरिया एंड जापान, जिसके अंदर इन्होंने यूज किए हैं यूएस न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर्स। तो नॉर्थ कोरिया का कहना है कि ये सारी की सारी ड्रिल्स जो है नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करती हैं और इसलिए हमको जो है ये टेस्ट करना पड़ा है। ये जो सिस्टम है इसका नाम है हेल 5 और 23 और ये जो है वो कहते हैं जी कि ये काफी एडवांस सिस्टम्स हैं। इससे पहले लोगों ने कहा था कि क्या इस तरह का कोई सिस्टम है भी नॉर्थ कोरिया के पास, वो या सिर्फ वो डरावे और धमकाने ही दे रहा है। लेकिन अब इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर ये टेस्ट करके उन्होंने कहा जी कि अब हम डिफरेंट ड्रोन जो वर्जन का हेल जो था उसको भी हमने सक्सेसफुली अंडर वाटर टेस्ट किया था और अब इसको भी किया है। हेल जो है उसका मतलब होता है सुनामी ये इसमें कोरियन में। तो वो कहते हैं जी कि ये हमारे वेपन्स जो हैं ये सुनामी की तरह जो हैं काम कर सकते हैं। एएफपी की दूसरी रिपोर्ट है जी और उसके मुताबिक यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा जी इसराइल किस चीज का शोर मचा रहा है कि हमास को खत्म करो हमास को खत्म करो। इसराइल तो खुद हमास को फाइनेंस करता रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वीक करने के लिए। जाहिर है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नतन्याहू साहब, उन्होंने इसको डिनाई किया, लेकिन बोरेल ने कहा जी कि ये तो इसको फाइनेंस कर रहे थे क्योंकि ये खत्म करना चाहते थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को और इनको चाहिए था एक दूसरा एक वो ला के सामने लाना चाहते थे जिसकी के वजह से ये इन्होंने इसको जो है बहुत बढ़ावा दिया था। बोरेल साहब जो है वो स्पीच कर रहे थे एट वलाडोलिड यूनिवर्सिटी और उन्होंने ज्यादा तो इसके ऊपर इलेबोरेट नहीं किया कि उन्होंने कैसे किया और क्या उनका मोडस ऑपरेंडी यानी कि क्या था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह से होता रहा। इसके अलावा यूनिसेफ की स्पोक्स वोमन जो है टेस इनग्राम, उन्होंने भी कहा जी कि थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जो गाजा में पैदा हुए हैं अक्टूबर 7 के बाद उनकी कंडीशन बेतहाशा खराब है। वो अभी विजिट कर रही थी गाजा को और उन्होंने कहा जी कि द मदर्स आर ब्लीडिंग टू डेथ, यानी कि माएं जब बच्चा पैदा कर रही हैं तो उनको इतनी ब्लीडिंग है उनका कुछ ख्याल करने के लिए नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर करके बेचारी बहुत सारी मरती जा रही हैं। वो कह रही है जी को और बहुत सारी तो औरतें जो प्रेग्नेंट थी जो मर गई हैं अटैक्स के अंदर, उनके तो बच्चे तो उनके पेट में जिंदा हैं, तो उनका अब सिजेरियन कर करके उनके बच्चों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। 20,000 बेबीज जो हैं अभी तक पैदा हो चुके हैं गाजा के अंदर, विच मीन्स 1 every 10 minutes जो कि उन्होंने हिसाब दिया है। और उन्होंने कहा जी कि औरतें वैसे तो जब बच्चा होता है तो वो उसको सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन गाजा के अंदर बच्चे जो हैं दे आर डिलीवर्ड इन हेल और जो ये न्यू बॉर्न बच्चे हैं अगर इनकी सफरिंग भी हमारा कॉन्शियस शेक नहीं कर सक रही है और हमको रात को सोने दे रही है आराम से, तो फिर हमारे सबके लिए जो है शर्म का बायस है। तो आज उन्होंने जनाब ये सारी बातें की हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल जो हैं अजीत संघे, उन्होंने आज एक रिपोर्ट जो सामने लेकर आए हैं और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो पैलेस्टीनियन डिटेनीज हैं जिनको के इसराइल की मिलिट्री पकड़ रही है उनको बेतहाशा ह्यूमिलिएट वो कर रही है। दे आर सब्जेक्टेड टू वीक्स ऑफ जेल इन अननोन पोजीशन लोकेशंस और फिर उनको फिजिकली अब्यूज किया जाता है और इसके अंदर सिर्फ मर्द ही नहीं औरतें जो इनकी सोल्जर्स हैं वो भी शामिल हैं। उनकी जो आज रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा जी कि इन लोगों को जब छोड़ा जाता है तो डायपर्स में छोड़ा जाता है, इनके बदन के ऊपर कपड़े नहीं होते हैं और बेतहाशा कोल्ड वेदर होता है। तो वो कहते हैं जी बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है उसमें वो लोग जो थे वो शेकन थे शॉक थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या आ रहा है हो रहा है। इसके अलावा जो बहुत सारे वीडियोज आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे इजरायली मिलिट्री जो है उसने सैकड़ों ही पैलेस्टीनियन मर्दों को बिल्कुल नंगा किया हुआ है और उनको आउटडोर जो कोल्ड में उनको बिठाया हुआ है, उनको कुछ को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, कुछ औरतें और बच्चे भी जो हैं वो भी देखे जा सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। ये जो वीडियोज हैं ये ली गई हैं बेत लहिया शुजेया और जबलिया के इलाकों में। इसके अलावा उन्होंने जो फ्री हुए हैं प्रिजनर्स वो कहते हैं जी कि ये इजरायली हमें कहते हैं कि हम अपने आप को खुद को गालियां दें, हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को पॉलिटिकल फिगर्स को हम गालियां दें और फिर जो है ये कहते हैं जी कि ये एक ओपन एयर डिटेंशन सेंटर्स हैं वहां पे हमको लेके चले जाते हैं जो हम इतनी सर्दी में रहते हैं, हमको मारा पीटा जाता है मैल ट्रीट किया जाता है। अजीत ने कहा जी कि इसराइल जो है उसको ये जितने डिटेनीज होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक इनको इनके साथ ट्रीट करना पड़ेगा और जो है वो ये नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा जो है बुरी बात है। تے جناب اسرائیل نو بڑی یونائیٹڈ نیشنز دی پرواہ، یونائیٹڈ نیشنز نے کتنی ہی ریزولوشنز کیتیاں، اسرائیل کہہ رہا ہے خلی ولی، کسی بات کو نہیں مان رہا، تو پھر آپ کیا کریں گے ابھی آپ؟ تو کیونکہ امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، ظاہر ہے ان کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ رائٹرز کی آج کی ایک خبر ہے جی، اور یہ بھی بہت زیادہ جو ہے کچھ تعلقات جو ہے یورپ کے اندر انڈیا کے خراب کر سکتی ہے۔ چیک ریپبلک جو ہے اس کی جو آج اپیلز کورٹ ہے، اس نے رول کیا ہے کہ جو یہ ایکسٹراڈیشن کیا جائے گا یو ایس انڈین جو سٹیزن ہے نکھل گپتا کو، جس کی عمر 52 ایئرز ہے، یو ایس کو، کیونکہ اس کو ایکیوز کیا جا رہا ہے فار دا انوالومنٹ انسکسیسفل فار میکنگ انسکسیسفل پلاٹ ٹو کل، یہ جو سکس سیپریٹسٹ تھے گر پتون سنگھ پنو کو، آن امریکن سوئل۔ یہ فائنل ڈیسیجن جو تھا اس کا ایکسٹریڈیشن کا، وہ تو ابھی ہاتھ میں ہے جسٹس منسٹر پیویل بلیزک کے ہاتھ میں، لیکن جو آج تک کی کاروائی ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے کر سکتا ہے چیک ریپبلک اس کو ایکسٹراڈائٹ امریکہ میں۔ گپتا جو ہے اس نے ایکیوز کیا ہے یو ایس فیڈرل پروسیکیوشنز کو، فیڈرل پروسیکیوٹرز نے گپتا کو ایکیوز کیا تھا کہ یہ کام کر رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ ٹو پلاٹ کلنگ آف نیو یارک سٹی ریزیڈنٹ پنو، جو کہ ایڈوکیٹ کر رہا ہے خالستان کا ایشو۔ تو اس کو اریسٹ کیا تھا چیک اتھارٹیز نے جون میں لاسٹ ایئر، اور پھر اس کو جو ہے جب یہ انڈیا سے پراگ میں آیا تھا اور اسی وقت اس کو پکڑا تھا۔ گپتا جو ہے وہ آرگیو کرتا ہے کہ وہ ہی از دا یو نو وہ ہے وکٹم آف مسٹیکن آئیڈینٹیٹی، اور یو ایس جو ہے از لوکنگ فار سمبڑی ایلس، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا پولیٹیکل کیس میرے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ پراگ کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے ان کی جو ارلیئر اپیل جو کہ دسمبر کے ڈیسیجن میں لوور کورٹ نے دی تھی، اس کو آج ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے اوپر اب غور کر رہے ہیں اور آپ کو ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکے گا، جس کے اوپر آج اس نے کافی پھر سے اعتراض کیا۔ نیٹو جو ہے جی وہ کولڈ وار کے بعد اپنی لارجسٹ جو ڈرلز ہیں وہ اب کر سکتا ہے، جس کا کہ نام ہے اسٹیڈ فاسٹ ڈیفینڈر 2024 ان نیکسٹ ویک۔ اس کا جو خلاصہ ہے آج جو ان کے نیٹو کے ٹاپ کمانڈر ہیں جنرل کرس کیوولی نے آج برسلز میں بات کرتے ہوئے، جو ان کی ٹو ڈے میٹنگ چل رہی تھی اس میں رپورٹرز کو بتایا، اور وہاں پہ بہت سارے نیشنل چیفز آف ڈیفنس جو ہیں وہ بھی نیٹو کنٹری سے آئے ہوئے تھے۔ اس میں تقریباً 90,000 پرسنل فرام نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ منتھس لانگ وار گیمز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اس کے اندر جو ہیں اوور 50 شپس، ایئر کرافٹس، کریئرز، ڈسٹرائرز، اوور 80 فائٹر جیٹس، ہیلی کاپٹرز اینڈ ڈرونز، 1,100 کامبیٹ ویکلز انکلوڈنگ 133 ٹینکس، 533 انفینٹری فائٹنگ ویکلز جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں وہ بتا کہ انہوں نے کرس کیوولی نے کہا جی کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نیٹو کتنا ریڈی ہے اور اس کی کیا ابلٹیز ہیں، اگر کوئی نارتھ امریکہ میں یا اس کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر اگر کوئی ایڈورسری اٹیک کرتا ہے تو ہم کتنے ریڈی ہو سکتے ہیں، وہ ریڈینیس جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ And جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی رائٹ کسٹم کیبنٹری انک، اور یہ کہتے ہیں جی کہ لیٹسٹ 3D کمپیوٹر ڈیزائن سے ہم یہ سارا کچھ بناتے ہیں، اور اٹالین یورپین مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے ہم سارے اصول جو ہیں اپنائے ہوئے ہیں۔ دے آر لوکیٹڈ ایٹ 1960 ایلزمیئر ڈرائیو اسکاربرو میں، اور ان کا نمبر ہے 647-300-8473، سیف کو اس میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب راجہ بادشاہ جی کہتے ہیں جی میں آپ کو بالکل رائٹ جو ہے وہ دیتا ہوں، کوریج دیتا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ بات کر لیں اور یہ جو ہے آپ کو بہت سارے آپ کے ڈالر بچا سکتے ہیں۔ تو راجہ بادشاہ جی جو ہے ان کا نمبر ہے 647-290-3773۔ اور جناب آپ کو پتا ہی ہے کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں کچھ چیزیں بھڑک گئی تھیں، ایران نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا اور دو دن پہلے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے جو ٹارگیٹڈ اٹیک تھا جو ٹیررسٹ ہیں پاکستان میں اس کے اوپر، پھر پاکستان نے بہت سوچا سمجھا، دو دن کے بعد پھر پاکستان نے بھی اٹیک کیا۔ لیکن بہت ساری جو ڈسکشن ریجن میں چل رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے ہمیشہ بہت سے قریب رہا ہے، ایران وہ کنٹری تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا جب پاکستان بنا تھا، اس کے علاوہ بھی وہ جتنی بھی وارز ہوتی رہی ہیں اس میں بھی وہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو ایران از ناٹ این ایڈورسری۔ تو ایران اگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے اب تو پاکستان کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ लिए। और आज वाकई पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त काम किया और बहुत मैच्योर लीडरशिप की। पाकिस्तान ने आज एक्सटेंड किया ऑलिव ब्रांच टू ईरान। उन्होंने कहा जी कि आपके जितने भी ट्रस्ट के मसले हैं उन सबको और टेररिज्म के किस्से को हम आपके साथ टैकल करने को बिल्कुल तैयार हैं। केयर टेकर फॉरन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने अपने जो इरानियन काउंटर पार्ट हैं हुसैन आमिर अब्दुलिया, उनको आज कॉल किया। फॉरन ऑफिस की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की रेडीनेस इनको बताई कि इन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन हम ईरान के साथ काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा जी कि हम सिक्योरिटी के मामलों पर भी काम करने को हम तैयार हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बिल्कुल फर्दर एस्केलेट इस सिचुएशन को नहीं करना चाहता है। तेहरान जो है उसकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारी जो है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा जो जिलानी साहब हैं उन्होंने दूसरी फोन कॉल की मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ तुर्की हकान फिदान को, जिसमें कि जिलानी ने उनको कहा कि ये जो ऑपरेशन था मर्ग बर सर मच्छर का, इसके अंदर हमने ईरान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनके ऊपर हमने अटैक किया था, जैसे कि ईरान ने भी कहा था कि हमने, लेकिन एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करना जो है इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। पाकिस्तान ने भी कहा था हमारा कोई डिजायर नहीं है कि हम सिचुएशन को एक्सेलेट करना चाहते हैं और इसीलिए हमने पहले ईरान की तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इसके अलावा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उन्होंने भी आज मीटिंग बुलाई हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जिसमें कि पाकिस्तान ने कहा था कि जिसमें उनको बताया गया कि पाकिस्तान ने जो ये आउटलॉड बलोच लिबरेशन फ्रंट एंड बलोच लिबरेशन आर्मी के जो बंदे वहां पे रहते हैं सिस्तान के एरिया में, तो उनके ऊपर हमने सिर्फ अटैक किया और उसके अंदर कोई भी ईरान का नुकसान नहीं हुआ है। तेहरान ने भी यही कहा था कि हमने भी जैशल अदल के बेसिस जो बलूचिस्तान में है उनके ऊपर अटैक किया था। बहरहाल जी आज उन्होंने आपस में बात किया और उन्होंने कहा जी कि हम तो बेसिकली जो है सिक्योरिटी के मामला हैं बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है इनको बढ़ाने की जरूरत है। आजम खान साहब जो कि इमरान खान साहब के कभी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, आज उनको और पांच और जो हैं विटनेसेस उनको बुलाया हुआ था, जिसमें कहते अनीसुर रहमान, जावेद इकबाल, हदायतुल्ला अशफाक और ये जो थे, और आज इनसे कहा गया कि भई आप बताएं साइफर केस में असल में हुआ क्या है। ये एक स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन, वो आज ये केस अदियाला जेल में सुन रहे थे। आजम खान साहब ने कुरान पे हाथ रखा और फिर कुरान को उठा के चूमा भी और कहा जी कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सारी ये बात सुनने के बाद अब जो फर्दर इनकी हियरिंग है वो जनवरी 22 तक जो है वो डेफर की गई है, लेकिन जो आज की हुई मीटिंग उसके अंदर यानी कि आज की जो हियरिंग थी उसमें आजम खान साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब को साइफर की कॉपी दी गई थी मार्च 2022 में और जो है पीएम साहब जो है उन्होंने उसको रिटेन किया हुआ है और बाद में उन्होंने कह दिया जी कि वो मेरे से मिसिंग है, यानी कि इमरान खान साहब ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा जी कि मास्टर कॉपी जो है वो तो फॉरेन ऑफिस के साथ ही है। एक मीटिंग हुई थी बनीगाला में जब ये साइफर आया था और उसमें कहा गया था कि साइफर को पढ़ें और डीकोड करें, उसके बाद ये जो था डिसाइड किया गया कि इसको कैबिनेट में भेजें। जब कैबिनेट को भेजा तो कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भेजा कि आपका काम है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। फिर एक मीटिंग हुई जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि यूएस को एक डिमार्च भेजने की जरूरत है फॉर इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स, और फिर उसके बाद जो है ये बात सामने आई। लेकिन वो कहते हैं जी कि जैसा ट्रेडिशन होता है कि साइफर्स दिखाए जाते हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स को लेकिन फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन खान साहब ने वो जो कॉपी थी वो रख ली थी और वापस नहीं की थी। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज फिर से जर्नलिस्टों के साथ अडियाला जेल में बात की है और उन्होंने कहा जी कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं एंड आई एम ओपन टू डायलॉग। पिछले 19 मंथ से मैं जो है यही कह रहा हूं कि मैं बात करने को तैयार हूं। उनसे उनको बताया गया कि जी पीपीपी और पीएमएलएन दोनों ही कह रहे हैं कि शायद सेंटर में उनकी गवर्नमेंट आ सकती है और बीबी जरदारी साहब जो है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो अब मुकाबला है दो पार्टीज के बीच में है क्योंकि पीटीआई रेस से बाहर है तो डेफिनेटली को लगता है कि वो ही जीतेंगे। दूसरी तरफ पीएमएलएन को लगता है वो भी जीतेंगे। इमरान खान साहब ने इस पर कहा जी कि ये जो है ये कंट्रोल लेना चाह रहे हैं पार्लियामेंट का। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, एक वीक गवर्नमेंट बनाई थी। वीक गवर्नमेंट जब मेरी बनी थी तो मुझे फौरन ही इलेक्शंस जो है फिर से अनाउंस करने चाहिए थे। इट इज बेटर टू सिट इन ऑपोजिशन देन टू हैव वीक कोलिशन गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी कि जो अभी भी ये जो हंग पार्लियामेंट्स होती हैं तो ये जो मुल्क के इकोनॉमिक या दूसरे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फिर वो पूरी तरह से फोर्सफुली जो है वो चला नहीं सकती हैं क्योंकि उनको दूसरे पार्टनर से भी पूछना पड़ता है। तो जो रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो उसी वक्त मुल्क में आती हैं जब आपकी एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है। तो जनाब ये हैं आज की बातें। इसके अलावा पीटीआई के लीडर जो हैं बैरिस्टर जो कि अब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया जिसमें कि पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल था बैट वो ले लिया गया है। और ये बहुत आपको पता ही है कि मैराथन हियरिंग्स चल रही थी पूरा लास्ट वीक जिसमें कि 3-member बेंच था हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और ये रिव्यू कर रहे थे। ईसीपी ने जो December 22 को डिसीजन लिया था कि पीटीआई का जो इंटर पार्टी इलेक्शन चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए इसका पोल सिंबल जो है वो रिवोक किया जाए। इसके ऊपर आज बात करते हुए इन्होंने कहा गौर साहब ने कहा कि ये वो फायज ईसा नहीं है जिनको मैं जानता था, मैं समझता था कि ये कुछ और डिफरेंट किस्म का देंगे बयान देंगे क्योंकि मैं इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था जब ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में काम करते थे और मुझे 100% यकीन था कि ये बिल्कुल सही फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि ऐसे रिपोर्टर्स ने पूछा इनसे, उन्होंने कहा जी कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपने एक रेफरेंस लाए थे पीटीआई की गवर्नमेंट में इनके अगेंस्ट तो उसका शायद ये बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे कि गौर साहब ने कहा कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है उसको तमाम चीजें तमाम प्रेजुडिसेस साइड पर रखनी चाहिए और किसी भी पोलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं चाहिए देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जो है इस तमाम की तमाम गेम के जो है वो एम्पायर हैं और वो सबको खिला रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारा ये जो सिंबल रिवोक किया गया है उसके अंदर और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारी टीम जो है ना खेले और वो पूरी तरह से अब तैयार है नवाज शरीफ साहब फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और ये डेमोक्रेसी जो होती है उसको डेमोक्रेसी की तरह रन करना होता है, ऐसे डेमोक्रेसी रन नहीं होती है। ये क्लैश ऑफ टाइटन्स जो है ये कब तक चलता रहेगा, इसको खत्म होने की जरूरत है। अकबर बाबर के क्वेश्चन पे उन्होंने कहा जी कि वो एक प्लांटेड बंदा है, ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद पीटीआई, उनकी जो मेंबरशिप है वो पिछले 13 साल से नहीं है पीटीआई के साथ, तो अगर वो पीटीआई के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको कुछ हम ज्यादा मतलब भाव नहीं देते हैं। ठीक है पहन खुश हो तुम, ठीक है जी। अच्छा जी, आज जनाब बीबी जरदारी साहब से एक टीवी का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें पूछा गया कि क्या जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट में आपकी अलायंस थी पीएमएलएन के साथ तो क्या आप फिर से पीएमएलएन के साथ अलायंस बनाएंगे, उन्होंने फ्लैटली इस चीज को रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा जी ये जो 16 मंथ की गवर्नमेंट थी ये बिल्कुल सही नहीं चल रही थी और उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, तो अब मुझे फूल नहीं बनाया जा सकता है। वो कहते हैं जी कि पीएमएलएन तो शायद बैंक कर रही है पीपीपी के ऊपर टू फॉर्म द गवर्नमेंट लेकिन हम नहीं कर रहे हैं और पीएमएलएन की तो कंडीशन अब पंजाब में भी वैसी नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब ये चौथी दफा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं लेकिन लोग इनसे बहुत तंग आ गए हैं, वो इनको नहीं प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है पीएमएलएन को और जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसको ब्लेम किया, उन्होंने कहा जी इनकी वजह से जो आईएमएफ के साथ मामलात थे वो सारे खराब हुए थे और इकोनॉमी हर्ट हुई थी और इनका ये जो नैरेटिव है कि हमने पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वो सेक्रीफाइस किया है और स्टेट को बचाने के लिए ये जोक है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन के तौर पे उन्होंने पूछा एंकर ने कि आप क्या सोचते हैं कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो कहता है जी मैं तो इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि किसी एक पार्टी को जो है उसका पोल सिंबल लेके उसको दीवार के साथ लगाया जाए, लेकिन पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तभी से उनको कहा गया था कि भाई आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं जो कि वो नहीं करवा रहे थे तो उसकी वजह से फिर अब इनको लूज करना पड़ा है अपना सिंबल जो है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो इनके केस जो है ठीक से नहीं चल रहे हैं उसकी वजह यह है कि इनकी जो लीगल टीम है वो बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रही और उसकी वजह से जो है पार्टी वर्कर्स को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है भाई खुश हो तुम। अच्छा जी, अच्छा जनाब इंडिया का जो मणिपुर है जनाब वहां पे तो मामलात किसी सूरत में ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको पता ही है कि लास्ट ईयर मई से यहां पे जो है इंतहाई जो है वायलेंस चल रही है और आज भी ये न्यूज आई है कि मणिपुर में इन द लास्ट 48 आवर्स 7 लोगों की डेथ हुई है। इसके ऊपर भड़कती हुई जो ऑपोजिशन है उसने आज मोदी जी के ऊपर फिर से निशाने खींचे, उन्होंने कहा जी कि मोदी जी को फौरन इस मसले को हल करने की जरूरत है। ये जब से ये मसले चल रहे हैं मणिपुर में 8 महीने से 200 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है, 400 वुंडेड है, 70,000 लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हैं, ये जो दंगे हुए थे इसमें पुलिस आर्मरीज जो थी उनको लूटा गया था, 100s of churches और टेम्पल्स जो थे उनको बर्बाद कर दिया गया था और विलेजेस के विलेजेस डिस्ट्रॉय किए गए थे। इसके ऊपर बात करते हुए कांग्रेस के लीडर जो हैं पवन खेरा साहब ने कहा है कि मणिपुर नीड्स अ हीलिंग टच और तमाम का तमाम कंट्री और दुनिया सारी जो है वो शॉक्ड है प्राइम मिनिस्टर की कंटिन्यूड साइलेंस के ऊपर, मोदी जी को इस मसले पे कुछ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो भारत जोड़ो नया यात्रा हमने शुरू की है राहुल गांधी जी ने वो इसीलिए मणिपुर से शुरू की थी कि उनको दिलासा देने के लिए कि कांग्रेस आपका ख्याल करेगी, और ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि देर इज होप इन कांग्रेस। 18 जनवरी को यानी कि कल जो है 5 मेटिस जो है उनको मारा गया था, और 2 डिफरेंट जो फायरिंग इंसिडेंट्स हुए थे उसमें, इससे पहले एक दिन पहले जो जनवरी 17 थी उसमें भी जो गन फाइट हुई थी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, उसमें भी एक सिविलियन और एक रिजर्व बटालियन का जवान और एक मणिपुर राइफल्स का जवान जो है उसकी डेथ हुई थी। तो वो कहते हैं जी कि ये कॉन्स्टेंटली जो है लड़ाइयां झगड़े चलते जा रहे हैं और इनको रोकने की जरूरत है। ये जनाब जो आसाम का जोहरात सदर पुलिस स्टेशन है उसमें राहुल गांधी जी के अगेंस्ट जो है वो एक FIR लगाई गई है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, और न सिर्फ राहुल गांधी जी के बल्कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं भारत जोड़ो नया यात्रा के बी बेजू, उनके खिलाफ भी इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो यात्रा के रूल्स इनको दिए गए थे, जो सेफ्टी रूल्स और जो इनको रास्ते दिए गए थे रोड के, वो इन्होंने सब वायलेट किए हैं। अपोजिशन लीडर्स जो हैं आसाम में, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी शेक हो गई है इस यात्रा की सक्सेस से, इसीलिए वो इस तरह के झूठे इल्जाम लगा रही है। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे वहां पे कोई भी पुलिस या उसके जो हैं डायवर्जन के लिए ट्रैफिक के कुछ भी इंतजाम नहीं थे, ना पुलिस खड़ी हुई थी, और हमारी बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वो जो छोटे छोटे डिटोर्स थे उनसे हम गुजर नहीं सकते थे, इसलिए हमने एक और रास्ता इख्तियार किया था जस्ट फॉर फ्यू मीटर्स, नॉट इवन 1 किलोमीटर। लेकिन इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के हिमाता बिस्वा शर्मा, उनके बारे में कहा था कि ये जो हैं परहैप्स द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं इंडिया के अंदर, जब अपने पार्टी के वर्कर्स को ये एड्रेस कर रहे थे हेलो वतिंग के अंदर। इसका जवाब देते हुए हिमाता बिस्वा शर्मा साहब ने कहा कि गांधी फैमिली जो है हिन्दुस्तान की सबसे करप्ट जो है वो फैमिली है, और ये यात्रा जो इन्होंने निकाली हुई है सिर्फ मियास को खुश करने के लिए, मियास जो है ये लोग बंगाली मुसलमानों को कहते हैं, तो वो कहते हैं जी कि जिधर जिधर मुसलमान होंगे उन उनको खुश करने के लिए कांग्रेस उधर उधर यात्रा निकालेगी, तो हमारा ये जो है मोटिव नहीं है। यात्रा जो है ये वाली ये सबसे बड़ी एक कांग्रेस की और अपोजिशन की आउटरीच प्लान है फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शंस, और ये सफर तय करेंगे सारे के सारे 6700 किलोमीटर का। ये सारी की सारी जो यात्रा थी ये शुरू हुई थी जनवरी 14 से मणिपुर में, और अब ये कहीं मार्च 20th या 21st को जाके खत्म होगी मुंबई के अंदर। तो जनाब ये है सारी स्टोरी हिंदुस्तान की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी जो हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने आज वार्न किया है कि ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन हिंदुस्तान के अंदर शुरू कर दी गई है राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर पे ये जो सारी कुछ मोदी जी कर रहे हैं और वहां पे बाकी के भी जैसे कि योगी आदित्यनाथ और बाकियों को भी ले जा ले जाके ये सारा कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर सेरेमनीज अब जो बड़ी होने वाली है वैसे तो 22 जनवरी को, लेकिन जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे ऑन फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ ज्योति बासु सेंटर फॉर सोशल स्टडीज एंड रिसर्च, उसमें उन्होंने कहा जी कि जो बीजेपी कह रहा है कि रियल फ्रीडम जो है वो हम जनवरी 22 को लेकर आएंगे, लेकिन असल में ये जो कुछ कर रहे हैं राम मंदिर के किस्से के सिलसिले में ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को अंडरमाइन करेगी और हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी सेक्रीफाइसेस को भी अंडरमाइन करेगी। ये एक कलेक्टिव कमिटमेंट थी हमारे फाउंडर्स की टू कीप अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया, जिसको मोदी जी जो हैं वो खराब कर रहे हैं। इसके अलावा डीएमके के लीडर जो हैं उन्होंने भी ये इसके ऊपर राम मंदिर के ऊपर बात करते हुए कहा, तमिलनाडु के वो मिनिस्टर भी हैं उदय निंदी स्टालिन, उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी बिल्कुल एग्री नहीं करती है कि मस्जिद को ढा के उसके ऊपर जो है मंदिर बनाया जाए। हम किसी भी रिलीजन के और फेथ के अगेंस्ट नहीं है और हम टेंपल्स के भी अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक मस्जिद को ढा के मंदिर बनाना हम इसके हक में बिल्कुल नहीं है। जाहिर है कि ये जो है रेफर कर रहे थे कि ये जो बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया था और उसके ऊपर फिर अब ये राम मस्जिद राम मंदिर बनाई जा रही है, तो वो कहते हैं जी कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रही है। ठीक है जी, खुश हो? अच्छा जनाब, विकास बहल साहब जो हैं उन्होंने आज डायरेक्टर जो हैं इंडिया के बॉलीवुड के, उन्होंने कहा है कि जी अब मैं एक सुपर नेचुरल थ्रिलर जो है वो लेकर आ रहा हूं, और आज उन्होंने नाम उसका अनाउंस किया है कि इसका नाम शैतान होगा। इसके अंदर अजय देवगन और माधवन और ज्योतिका जो है वो नजर आएंगे लीड रोल्स में। ये फिल्म जो है ये आएगी सिनेमाज में 8 मार्च को। इसमें आज ये जितने भी ये तीनों लीड रोल में जो है कास्ट, उसने भी ये पोस्टर जो है शेयर किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अभी तक इसका प्लॉट जो है इट इज अंडर रैप्स, लेकिन जो एक आया है इसका पोस्टर उसमें दिखाया जा रहा है 5 वुडू डॉल्स, और ये हिंट कर रहा है कि शायद ये ब्लैक मैजिक के ऊपर हो सकती है। ये फिल्म इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय जियो स्टूडियोज, अजय देवगन, एफ फिल्म्स एंड पेनोरामा स्टूडियोज इंटरनेशनल। तो जनाब लोग एक्साइटेड, अब देखिए जरा बॉलीवुड के कितने सितारे जो हैं अब साउथ में जाके काम कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा साउथ में, बड़ा पैसा ना दुबई से आ रहा है। वो जो बड़े बड़े लले बैठे हुए हैं ना गोल्ड के बिजनेस पे, वो ये सारा पैसा इनको भेजते हैं। आयान बड़ी बड़ी फिल्म बनाओ, बढ़िया 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 है जी ऐसे। भाई साहब एक एक बंदे के 400 गोल्ड के स्टोर हैं, कह नहीं आप इमेजिन कर सकते हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं ये हैं साउथ के सारे, तुसी की इत्थे कर रहे हैं ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो मूवी आ रही है फाइटर, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की, इस पे पाकिस्तानी जनता बहुत भड़क गई है, खासतौर पे हमारे सेलिब्रिटीज। अच्छा जी, उसमें दिखाया क्या गया है कि इंडियन एयरफोर्स जो दावा करती है कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 2 तैयारे गिरा लिए थे, तो भाई फिर घुस के मारने का क्या फायदा होया है जी, और थोड़ा कैप्टन भी फड़िया गया सी। ए पायन थोड़ा शर्म करो, व्हाट इज दिस है। उसके ऊपर जनाब हानिया आमिर और अदनान सिद्दीकी और बहुत सारे जो सितारे बाकी के भी हैं वो हमारे पाकिस्तानी भड़क गए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद वो भी भड़क गए हैं। अच्छा जी, अब जब हानिया आमिर ने कहा, उन्होंने अपने उसके ऊपर एक्स के ऊपर कहा कि भई ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड है कि इस डे और टाइम एंड एज में भी आप समझते हैं कि सिनेमा की इतनी बड़ी पावर है, फिर भी आप इस तरह की गंदी फिल्में बनाते हैं जिसकी की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो रिफ्ट जो है वो होती हैं। इसके ऊपर सिद्धार्थ आनंद ने कहा जी वाह कमाल है, मुझे तो बड़ी हैरत है, तुमने तो खुद काम किया हुआ फिल्म में परवाज है जुनून, जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का और मिलिट्री का दिखाया कि उन्होंने इंडिया को बड़ी मैचिंग दी है, तो हिंदुस्तान में तो कभी उसके ऊपर नहीं बोला, तो अब तुम जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हो तुम क्यों बोल रहे हो अगर हम इस तरह की कोई फिल्म बना रहे हैं। इसके ऊपर जी अदनान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो एक ऐसा जमाना था कि जब हम लव सेलिब्रेट करते थे, और अब जो है बॉलीवुड वो सिर्फ हेट फील्ड नैरेटिव जो है वो दिखाता है, हमेशा पाकिस्तानियों को विलन दिखाता है, बजाय इसके कि हम अपनी फिल्मों के अंदर प्यार मोहब्बत को प्रमोट करें, इट इज वेरी डिसहार्टनिंग कि आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं, आर्ट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, तो लेट्स स्प्रेड लव एंड पीस। जारा नूर अब्बास ने अपने इंस्टा स्टोरीज के ऊपर कहा कि आंट यू गाइज टायर्ड ऑफ सेलिंग द सेम फॉल्स क्रैप, और उन्होंने कहा जी ये क्यों क्रैपी स्टोरीज आप बना रहे हैं। उसने कहा जी ग्रो अप गाइज, दुनिया जो है वो आगे बहुत ज्यादा मूव कर गई है, आप मेच्योरिटी थोड़ी सी दिखाएं, और इस तरह की चीप फिल्में जो हेट्रेड फैलाती हैं उसको ना आप बनाएं बल्कि पीस को प्रमोट करें। ठीक है पहन, ठीक है ओके चलो जी। और जनाब आज आई है फिल्म मैं अतुल हूं, यानी कि अतुल बिहारी वाजपेयी जो कि इंडिया के बहुत ही बिलवड किस्म के प्राइम मिनिस्टर थे, वो आज फिल्म आई है और उसके बहुत अच्छे रिव्यूज आए, कुछ लोगों ने जाहिर क्रिटिसाइज भी किया है। उसके अंदर एक बहुत ही उनका मशहूर जुमला है, अपनी आधी आंखें बंद कर के जब वो पूरी बात बोलते थे तो 7 समुद्र पार हर कोई सुनता था है जी। तो कहते हैं जी इस लाइन के ऊपर बेसिकली जो है उनकी ये बायोपिक बनाई गई और उनका सारा पॉलिटिकल करियर जो है उसके ऊपर बनाई गई, और बड़ा जो इलस्ट्रेट करियर था उनका, ये इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उसके ऊपर ये सारी फिल्म है। कोई उसमें क्रैप नहीं है, कोई दुश्मनी, कोई ड्रामा, कोई तमाशा उसके अंदर नहीं दिखा रहे हैं। इनका जो रोल है अटल बिहारी वाजपेयी का, ये पंकज त्रिपाठी ने निभाया है, और ये फिल्म जो है बनाई है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर रवि जाधव ने, और वो कहते हैं जी कि ये बिल्कुल जो है इसने पिच परफेक्ट परफॉर्मेंस जो है अतुल बिहारी वाजपेयी की जो है निभाई है पंकज त्रिपाठी ने, तो बड़ी इनकी आज तारीफ की गई है। ठीक है जी, और जनाब कड़ी खबर भी उन सुना दी, अच्छी खबर बहुत सुन ली है, बहुत मजे कर ले हैं। पाकिस्तान जनाब आज फिर हार गया न्यूजीलैंड को, है जी क्या बोलते हैं इसमें, आज मैं ट्वीट देख रही थी तो उसमें एक मुझे बड़ा फनी सेंटेंस नजर आया, वो कहते हैं गई भैंस पानी में अब इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जी गई भैंस पानी में, ठीक है जी। चौथा T20 भी न्यूजीलैंड से हार गया है एट हेगली ओवल इन क्राइस्टचर्च। हालांकि जो शुरू की बॉलिंग थी पाकिस्तान की बहुत ही कड़ाकेदार थी और लग रहा था कि जैसे आज पांच पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वॉज 20 for 3 इन थर्ड ओवर। लेकिन फिर ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिशेल ने 139 रन का पार्टनरशिप बनाया इन जस्ट अबाउट 93 बॉल्स, और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट ये जीते 11 बॉल्स टू विन। दोनों ने जो है 50-50 बनाया। रिजवान जो था उसने स्कोर किया था अनबीटन 90 for 63 बॉल्स, और पाकिस्तान जो था उसने इनको 159 रन का टारगेट दिया था। रिजवान ने मारे 6 4 और 2 छक्के। नवाज जो है उसने भी 9 बॉल्स पे 21 रन बनाए, उसने भी 3 छक्के मारे इसको एडम मिलने को। बाबर आजम ने बनाए 19 रन ऑफ 11 बॉल्स और 51 रन ऐड किए फॉर सेकंड विकेट पार्टनरशिप विद रिजवान। लेकिन लोकी फर्गसन एंड मैट हेनरी ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हुए दो दो विकेटें ली, और अर्लियर जो न्यूजीलैंड था उसने टॉस जीता था और उसने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि आपने आज चलते हुए देखी होगी हमारे जो eawaz.com है उसके ऊपर भी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं जका अशरफ साहब, उनके बारे में खबर आई है कि उन्होंने शायद रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने उनको बनाया गया था पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, पहले ऐड किया गया था ऑन July 6, 2023 और फिर उनको बनाया गया था पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन जब नजम सेठी साहब को जो है हटाया गया था और इनको लाया गया था। जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि जका अशरफ साहब ने कहा जी कि मैंने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ये एटमोसफेयर जो है या एनवायरमेंट जो है बोर्ड का वो सही नहीं है, तो इस तरह से मैं काम नहीं कर सकता हूं, और अब ये इट इज अप टू प्राइम मिनिस्टर काकड़ के वो जिस किसी को भी नॉमिनेट करके मेरी जगह पे लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। बहरहाल अब इस चीज की अगर ज्यादा पुष्टि होगी तो फिर हम ये आपको ज्यादा बताएंगे। बहरहाल जी आज ये खबर आई है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज, द सर्बियन स्टार एंड ही इज एक्चुअली अ स्टार, नोवाक जोकोविच, ठीक है जी।
नोवाक है
ना, बिल्कुल वैक तो उसे कराना ही नहीं है, नोवाक रहेगा वो सारी जिंदगी। ही हैज बिकम द सेकंड प्लेयर टू विन ओवर 30 कंसेक्यूटिव सिंगल मैचेस एट ऑस्ट्रेलियन ओपन इन ओपन एरा आफ्टर मोनिका सेलर्स, जिसने के 33 कंसेक्यूटिव विन्स किए थे बिटवीन 1991 से 1993। वाओ, मेरी फेवरेट थी मोनिका सेलर्स, बहुत मुझे पसंद थी। ही हैज ऑलरेडी वन 31 कंसेक्यूटिव मैचेस, और आज जो है इसने डिफीट किया है जो नेक्स्ट लेवल में जिसमें ये खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, थॉमस मार्टिन एचवरी को 6-3, 6-3, 7-6 टू रीच द फोर्थ राउंड नाउ, और वो कहते हैं जी कि ही इज नाउ ऑन ट्रैक टू विन 25th ग्रैंड स्लैम टाइटल एंड ही विल एक्चुअली सरपास इफ ही विन्स द रिकॉर्ड विच वॉज हेल्ड बाय ऑस्ट्रेलियन था ये भी मार्गरेट कोर्ट, उनसे भी आगे अब चले जाएंगे। लेकिन जाहिर ये मतलब ये नहीं है कि मेरा कि ये भी ऑस्ट्रेलियन है, ये सर्बियन है वो ऑस्ट्रेलियन है, यानी कि इनसे आगे चले जाएंगे अब ये, और अब ये जो नेक्स्ट लेवल जो फोर्थ राउंड है उसमें ये फेस करेंगे एड्रियन, या तो एड्रियन मैनेगीरो को या कि अमेरिकन बेन स्टेल्टन को। तो ऐसे है, और अगर जीते थे फेरते जनाब
जी जाएगा जी,
हाँ जी इसको नो वैक है ना,
नो वैक है इसको, इसको
इसके अंदर कोई खराबियां तो नहीं आई ना मजद भाई, जितना हमारे अंदर आ गई है।
स्पेनिश प्लेयर है, यंग स्पेनिश प्लेयर,
या या
ही इज वेरी गुड राइट नाउ, बट नो वैक
तो नो वैक ही है ना,
नो वैक है जी।
देखो मजद भाई, हमने वैक कराई थी ना तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत खराबियां पैदा हो गई हैं, बहुत सारा जो है ना वो जरासीम आ गए हैं, वो इसने तो वैक कराया ही
नहीं है, जिस्म के साथ
दिमाग में भी दिल भी खराब है, दिमाग भी खराब है, सब खराब हो गया है। तो ये तो नो वैक है, तो ये इसका तो
प्योर आदमी,
ये प्योर आदमी है, बिल्कुल
इसमें कोई
है जी
फॉरेन सब्सटेंस अपने अंदर नहीं लगाया,
बिल्कुल शुद्ध है ये।
ये थी हमारी आज की खबरें
भाई, भाई प्लीज मैं अगले दो दिन नहीं आ रही, सॉरी
बकिया की खबरें हम
नहीं सुना रही, मैं आपको दो दिन सुना रही,
दो दिन तक हमने शाजिया को एकदम ऑफ कर दिया जी, टर्न ऑफ, वो अपने टीवी और रेडियो को हमने टर्न ऑफ कर दिया इस टाइम के लिए कि शाजिया का नहीं सुनना हमने, तो बखिया की बात है, अब शाजिया को हम बुलाएंगे मंडे वाले दिन
इंशाल्लाह,
एकदम फ्रेश होके आएंगी, इनको अलाउ नहीं है कि ये सिख हुए।
अब ये सिख डिपेंड करता है कि क्या है, SICK या SIKH,
सिख ना हो,
सो आई एम सिख ना हो,
यस
कौन सा सिख,
SICK।
اوکے مائی بھائی، تھینک یو، آئی سی یو آن منڈے
انشاءاللہ. اب میں لیے چلتا ہوں آپ کو صاحب، پروگرام ان پروگرس ود ذیشان احمد، کیپ ٹیوننگ دس چینل اینڈ باقی کی باتیں انشاءاللہ منڈے کو. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.
آسمان کے ستارے نینا گرہن میں آج ٹوٹتے ہیں نینا، کبھی جو دھوپ سینکتے تھے نینا ٹھہر کے چھاؤں ڈھونڈتے ہیں.
तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया, एक तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया, करने लगा तुम अटक्का तो आज का बन गया पक्का।
आज अभी मैंने तेरा बाई ग्रांट कर दिया, तेरी सारी हद करती मैं तो नोट करूं, तुझे थाने में ले जाके मैं रिपोर्ट करूं।
कर फाइट सर मूड करूं मैं लाइट, तुझे जीन में दिखा के फिल्म खोल मान के
तो इश्क में देखो बस उम्मीद हो गया बिना बात